समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी होगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Neha, hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Neha Goswami. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. India stops flow of water to Pakistan through the Baglihar Dam on the Chenab River in the wake of Pahalgam terror attack.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में मुलाकात की।
इंडियन जापान डिस्कस रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
इजरायली कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ ऑफेंसिव अगेंस्ट हमास इन गाजा।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए पश्चिमोत्तर भारत में आंधी और तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad to clash with Delhi Capitals this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about an overview of WAVES 2025 and World Hand Hygiene Day. Yes, the premier edition of World Audiovisual and Entertainment Summit Waves 2025 concluded on a high note in Mumbai yesterday. And Neha, we have seen an overwhelming response from exhibitors, industry leaders, startups, policymakers, academia and the general public in the summit. And the summit emerges a key convergence point for the media and entertainment ecosystem, drawing participation from every segment of the industry, from celebrated artists and influential content creators to tech innovators and corporate leaders. And Neha, with a vibrant mix of exhibitions, panel discussions, B2B collaborations, the event witnessed a remarkable turnout and reaffirmed India's position as a rising global powerhouse of media and entertainment. The celebration of creativity, technology and storytelling began with the inauguration of its maiden edition by Prime Minister Sri Narendra Modi in a star-studded event held in Jio World Convention Centre. And you know, Neha, in his inaugural address, Prime Minister Modi remarked that WAVES is not just an acronym, it's a wave of culture, creativity and universal connectivity. The Prime Minister said that India is emerging as a global hub for film production, digital content, gaming, fashion, music and live concerts. He called upon the creators of the world to dream big and tell their stories, to the investors to invest not just in platforms but in people, and to the Indian youth to tell their 1 billion untold stories to the world.
WAVES ye sirf acronym nahi hai, ye waqai ek wave hai, culture ki, creativity ki, universal connect ki. वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए पिछले 4 दिनों में वेव्स 2025 ने विचारों, कौशल और क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि के उच्च स्तरीय आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। वेव्स 2025 के कॉन्फ्रेंस ट्रैक ने संवाद और सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने दुनिया भर के विचारकों, उद्योग के अग्रदूतों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों को एक साथ लाने का काम किया है।
Yes, Neha, and we have seen in the last 4 days the waves will be known for the high impact knowledge sessions and the discourse covering a broad spectrum of topics, including broadcasting and infotainment, AVGC, XR, digital media and films.
बिल्कुल अभिषेक, तीन मुख्य हॉलों में और पांच अतिरिक्त हॉलों में आयोजित 140 से अधिक सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें से शिखर सम्मेलन में उपस्थिति का स्तर काफी अधिक रहा.
Absolutely, and the plenary sessions featured over 50 keynote addresses by eminent personalities such as Mukesh Ambani, Ted Sarandos, Kiran Mazumdar-Shaw, Neil Mohan, Shantanu Narayan, Mark Reed, Adam Mosseri and Nita Ambani. The insights offered compelling perspectives on the evolving entertainment industry, advertising landscape and digital transformation. Film icons including Chiranjeevi, Mohanlal, Hema Malini, Akshay Kumar, Nagarjuna, Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Alu Arjun and Shekhar Kapoor, many of whom were also members of the Waves Advisory Board, engage in thought-provoking conversations on the future of cinema and content creation in the age of virtual production and artificial intelligence.
वेव्स 2025 में 40 मास्टर क्लास को व्यवहारिक शिक्षा और रचनात्मक अन्वेषण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था. आमिर खान द्वारा अभिनय की कला, फरहान अख्तर द्वारा निर्देशन की कला और माइकल लहमैन द्वारा फिल्म निर्माण में अंतर्दृष्टि जैसे सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को उद्योग तकनीकों का सीधा संपर्क प्राप्त हुआ.
Yes, and Waves also featured 55 breakout sessions, which provided a platform for in-depth discussion on specialized themes such as broadcasting, digital media, OTT, AI, music, news, live events, animation, gaming, virtual production, comics, and filmmaking. These interactive sessions brought together senior professionals from leading companies including Meta, Google, Amazon, X, Snap, Spotify, DNEG, Netflix, and NVIDIA, along with representatives from industry bodies such as FICCI, CII and IMI. Designed to encourage sector-specific insights and collaborations, the discussions address critical challenges and charted new directions for growth and innovation.
वेव्स बाजार ने 1328 करोड़ रुपए के व्यापारिक सौदे हासिल किए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने M&E सेक्टर में 8000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए. वेव्स बाजार का पहला संस्करण, जिसे वेव्स के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, एक काफी शानदार सफलता थी, क्योंकि इसने खुद को रचनात्मक उद्योगों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया है. इस बाजार ने फिल्म, संगीत, रेडियो, VFX और एनिमेशन क्षेत्रों में 1328 करोड़ रुपए के व्यापारिक सौदे या लेन देन दर्ज किए हैं.
Yes, and Waves 2025 has set a benchmark as a global platform that seamlessly brought together creativity, commerce and collaboration. From visionary policy announcements and landmark international agreements to robust business deals and groundbreaking startup investments, the summit underscored India's growing stature as a global leader in the creative economy. The adoption of Waves Declaration by 77 participating nations and the success of Waves Bazaar and the WaveX Accelerator collectively signal a future anchored in innovation, inclusivity and international partnerships. And as the curtains fall on this historic first edition, Waves has not only showcased India's creative prowess, but has also catalyzed a sustained global movement, one that will continue to inspire, invest in, and elevate the voices of creators worldwide. And now, moving on to a second topic of the day, that is the World Hygiene Day. Today is World Hand Hygiene Day, established by the World Health Organization, WHO. World Hand Hygiene Day is an annual global campaign to promote and improve good hand hygiene practices in the healthcare sector. And yet, despite modern awareness campaigns, antimicrobial resistance and the devastating global toll of COVID-19, hand hygiene remains one of the most overlooked tools in a health arsenal. The global observance aims to raise awareness about the essential role of hand hygiene, especially in preventing serious and possibly fatal healthcare-associated infections.
जी, हर दिन औसत व्यक्ति एक घंटे में 16 से 23 बार अपने चेहरे को हाथ लगाता है. इनमें से प्रत्येक स्पर्श रोगजनकों के हमारे सिस्टम में प्रवेश करने का एक संभावित मार्ग है. हमारी उंगलियां, दरवाजे के हैंडल, करेंसी नोट, मोबाइल फोन और सार्वजनिक रेलिंग से बैक्टीरिया को हमारी आंखों, नाक और मुंह तक ले जाती है. इसके परिणाम स्वरूप फ्लू, नोरोवायरस या इससे भी बदतर साल्मोनेला और हेपेटाइटिस जैसे वायरस का सूक्ष्म लेकिन खतरनाक हस्तांतरण होता है.
Yes, Neha, and did you know that a research shows that proper hand hygiene can reduce respiratory infections by up to 21% and gastrointestinal infections by over 30%. According to WHO data, 30,000 women and 400,000 babies die each year from infections like puerperal sepsis, largely due to poor sanitation and hand-washing practices during childbirth. And this, Neha, are preventable deaths.
नियमित और उचित तरीके से हाथ धोने से हानिकारक रोगाणुओं का संचरण काफी हद तक कम हो जाता है, जो मधुमेह, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों जैसी स्थितियों से हमें बचा सकते हैं। स्वच्छ हाथों को बढ़ावा देकर हम न केवल अस्पताल से होने वाले संक्रमणों को कम करते हैं, बल्कि उन कमजोर आबादी की भी रक्षा करते हैं जिनकी पुरानी बीमारियां उन्हें गंभीर परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इस वर्ष का अभियान इस बात पर जोर देता है कि स्वच्छ हाथ दीर्घकालिक स्वास्थ्य और बीमारी की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान का उद्देश्य अनावश्यक दस्ताने के उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करना और बीमारियों के प्रसार को रोकने में हाथ की स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 दिवसीय महिला महाजन सुनवाई शिविर शुरू किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर ने इस शिविर का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
National Commission for Women has initiated 5 days Mahila Mahajan Sunwai camp in the national capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Chairperson of the National Commission for Women, Vijaya K. Rahatkar, inaugurated this camp. During her address, Ms. Gupta said that this is a very good beginning. She expressed hope that all distressed women will get quick justice. She said that such a camp gives quick action on all pending cases of Delhi. NCW Chairperson said that the objective of this camp is to provide quick and effective solutions to complaints against women. She said the NCW is running such programs in different states of the country. She said that the speed at which the commission is working on the complaints of women, it seems that all the complaints will be resolved by the end of the year. Swati Rakheja for Parikrama, Akashwani News.
Now moving on to Goa, the Handicrafts Corporation of the State Government of Goa recently organized a handicraft sale and exhibition in Mapusa. Artisans from Goa as well as other states joined the participated in the exhibition. We have more from a correspondent.
A vibrant splash of color and culture is lighting up Mapusa, Goa as handicraft sale and exhibition continues at the premises of Sri Bodhageshwar Temple. Organized by the Handicrafts Corporation of the Goa, the event titled Aparanth Mand celebrates the creativity of artisans from Goa and other states. Over 150 skilled craftsmen have set up stalls at the venue, showcasing everything from eco-friendly home decor and children's items to traditional clothing and accessories. This is more than just a market. It's a platform to support and celebrate handmade sustainable art. One of the star attractions this year is Kantha Cloth Stall, drawing crowds vivid embroidery and intricate designs. Speaking with Akashwani, MLA from Mapusa, Joshua D'Souza, said that
almost a big congratulations to Goa Handicrafts for restarting such an important event that has been there in the calendar for the last so many years. An event that touches the lives of many artists. But for kalakars to become successful, we need to provide them with a platform. And this is just one such platform. Aparanth Mand is one such platform. It is a base for artists to come together. And from here, it is how recognition begins.
So if you are in or around Mapusa, don't miss this chance to take home a piece of India's living tradition. This is Mahesh Sobre for Parikrama from Akashwani Panji.
For the first time in 16 years, a 5-year-old Asiatic lioness, Mahagauri, delivered 4 cubs at New Delhi's National Zoological Park last week. Zoo officials confirmed that the cubs have been fathered by a male Asiatic lion, Maheshwar. Unfortunately, 2 of the cubs succumbed to death because of poor health. Our correspondent reports that currently the rest of the cubs and Mahagauri have been monitored around the clock by the zoo officials through CCTV cameras.
Zookeepers are carrying out what is required because the newborn's health stays the first priority of the zoo authority. Talking exclusively to Akashwani News, Director of the National Zoological Park, New Delhi, Dr. Sanjeet Kumar has said that this is the first birth of Mahagauri, so motherly instinct is very less in the lioness. To cope with that, the zoo authority is keenly observing and taking care of the cubs and the mother. The National Zoological Park, which houses more than 1,000 animals, has also taken several steps to combat this severe summer heat wave. Talking to Akashvani News, director has said that they are changing the diets of the animals in accordance with the season. He added that water-rich vegetables and fruits are being given to the animals to keep them hydrated.
Surely the summer and winters are the pinch period for any species, any animals, and especially in the zoo condition and Delhi condition, both summer and winters are very extreme. So from the February to March onwards, we are taking the zoo in the summer management plan mode. Foremost thing, what we are doing that slowly we are changing the animals' diet, which includes, especially for the birds, herbivores, which includes mainly the food which contains more water, like seasonal fruits, vegetables, and less fat is the provision of water. So one or two coolers have been installed. Third component is the observation through CCTV as well as the animal keepers. So if any animal is showing any dullness or anything abnormal, then our veterinary team, they are checking it, and if required, they are taking it to the hospital for necessary medications.
Currently, the zoo houses 6 Asiatic lions, including the 2 newborns, and the zoo authority are closely monitoring the animals in the wake of rising temperature in the national capital. For Parikrama, Aman Yadav.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In IPL cricket today, host Sunrisers Hyderabad will take on Delhi Capitals in Hyderabad. The match will start at 7:30 p.m. Yesterday, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 37 runs at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala.
बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज तैराकी, खो खो, कबड्डी, मलखंब और वॉलीबॉल के मुकाबले खेले जा रहे हैं. कल पहले दिन महाराष्ट्र के तीरंदाजों ने 4 में से 3 स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया. बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की तेजल राजेंद्र सालवे ने कंपाउंड क्वालिफाइंग राउंड में 697 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया. बालक वर्ग में आंध्र प्रदेश के कोडंडा पानी थारनीश जाथिया ने तीरंदाजी में 655 अंकों के साथ रिकर्व क्वालिफाइंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया.
Yes, and moving on to some business news, the benchmark domestic equity indices today ended in positive territory, buoyed by buying across all sectors barring banking. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex climbed 295 points or 0.37% to close at 80,797. The National Stock Exchange Nifty 50 jumped 114 points or 0.47% to settle at 24,461. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 94,930 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 94,910 rupees per kilogram when reports last came in. Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We'll remember revolutionary freedom fighter Nepal Mukherjee, who was made a state prisoner on the 5th of May 1917. A resident of Dhaka district, now in Bangladesh, Mukherjee was a prominent member of the Dhaka Anushilan Samiti as well as the Jugantar Party.
He took part in many revolutionary activities, notably the Chandrakona robbery in 1916 and the murder of Deben Ghosh thereafter. He was also a custodian of the arms and ammunition being procured for the Indo-German conspiracy. He was in close touch with revolutionary Atul Ghosh and other leading members of the Jugantar Party.
Nepal Mukherjee was interned via government order dated 11 September 1916 and made a state prisoner on the 5th of May 1917. He was released on the 4th of January 1919 and later arrested again. He died during internment in June 1926 in Comilla. We salute this great martyr.
We also remember Chittagong Revolutionary Party member Manoranjan Sen, who was killed by the British military guards on the 5th of May 1930.
Indian Republican Army!
Manoranjan Sen took part in the Chittagong Armory Raid on the 18th of April 1930 and also in the fighting against the British soldiers on Jalalabad Hill on the 22nd of April 1930.
A participant in the plan to raid the European residential area in Chittagong on the 5th of May 1930, Sen was chased by the military guards, surrounded and killed in the encounter. We salute this great son of the soil.
We remember martyr Shadi Khan, who took part in the First War of Indian Independence in 1857 and fought the British on different occasions. He led a group of independence activists and marched towards Delhi.
On the way, Khan was caught by the company troops in the course of a confrontation and charged with sedition and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for life with labour and iron in April 1858. He died in the Andaman Islands on the 5th of May 1859.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह का आज जन्मदिन है। उन्हें यह सम्मान सन 1971 में मिला। कर्नल होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को सोनीपत हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। वह एक मेधावी छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद में भी आगे रहते थे। होशियार सिंह पहले राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए वॉलीबॉल की पंजाब कंबाइंड टीम के लिए चुने गए और वह टीम फिर राष्ट्रीय टीम चुन ली गई जिसके कैप्टन होशियार सिंह थे। इस टीम का एक मैच चार्ट रेजिमेंटल सेंटर के एक उच्च अधिकारी ने देखा और होशियार सिंह उनकी नजरों में आ गए। इस तरह होशियार सिंह के फौज में आने की भूमिका बनी। 1957 में उन्हें 2 जाट रेजिमेंट में प्रवेश लिया। बाद में वह 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेकर अफसर बन गए। 1971 के युद्ध के पहले होशियार सिंह ने 1965 में भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपना करिश्मा दिखाया था। 1971 का युद्ध तो उनके लिए निर्णायक युद्ध था जिसके बाद उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।
Yes, and Naushad Ali passed away on this day in 2006. He was an Indian composer for Hindi films. He is widely considered to be one of the greatest and foremost music directors of the Hindi film industry. He is particularly known for popularizing the use of classical music in films.
16 वर्ष की उम्र में मुंबई में 1940 में बनी प्रेम नगर में नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। इसके बाद एक और फिल्म स्टेशन मास्टर भी उनकी सफल रही। इसके बाद तो जैसे नौशाद संगीत के मोतियों की माला सी बुनते चले गए। नौशाद को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी लेकिन शायद यहीं से नौशाद का सुनहरा सफर शुरू हुआ। यह नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बाबरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन संजोग आदि कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुलाना देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेश जाने वाले आदि की बदौलत इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया।
बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना।
सी विरुता चालम पास्ट ऑन दिस डे 1948, बेटर नोन बाय द सूडोनिम Pudumai Pithan. He was one of the most influential and revolutionary writers of Tamil fiction. His works were characterized by social satire, progressive thinking, and outspoken criticism of accepted conventions. He is an individual and his works have been extensively reviewed and debated for over 60 years since his death. His influence has been accepted and appreciated by present-day writers and critics of Tamil fiction. In 2002, the government of Tamil Nadu nationalized the works of Pudumai Pithan.
आज जन्मदिन है भारतीय अभिनेत्री और नर्तकी चित्रा सेन की। चित्रा सेन का जन्म 1946 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने 1950 के दशक में बंगाली फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। चित्रा सेन ने मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने थिएटर में भी काफी काम किया है। उन्होंने ज्ञानेश मुखोपाध्याय के निर्देशन में अपने करियर की शुरुआत की। चित्रा सेन ने बंगाली फिल्म उद्योग में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी प्रमुख फिल्मों में जौतूक, सिटी ऑफ जॉय, कन्यादान और भोए शामिल है।
সঙ্গে আমরা কোন সন্ধি রাখব না ছুটবো আমার রাস্তা জুড়ে মেলবো ডানা চলবো উড়ে খিলখিলিয়ে হাসি পেলে ঘুমটা দিয়ে ডাকবো না ছুটছে জীবন উড়ন চন্ডি
Yes, and Adele was born on this day in 1988. She is an English singer-songwriter. Regarded as a British icon, she is known for her mezzo-soprano vocals and sentimental songwriting. Her accolades include 16 Grammy Awards, 12 Brit Awards, including 3 for British Album of the Year, an Academy Award, a Primetime Emmy Award, and a Golden Globe Award. In 2012, Adele released Skyfall, a soundtrack single for the James Bond film Skyfall, which won her the Academy Award for the Best Original Song. Let's listen to it.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have time doing things that you don't understand.
आज पुण्यतिथि है भारतीय क्रिकेटर सुरेंद्र नाथ की। उन्होंने 1958 और 1961 के बीच कई टेस्ट मैच खेले। वह मुख्य रूप से मध्यम गति के स्विंग गेंदबाज थे। उन्होंने 1955-56 से लेकर अपने पहले करियर में सर्विसेज के लिए अपना घरेलू क्रिकेट खेला। वे 1958-1959 में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति में आए, जब सर्विसेज के लिए खेलते हुए उन्होंने एक टूर मैच में वेस्टइंडीज के पहले 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था।
Yes, and Gulshan Kumar Dua was born on this day in 1951. He was an Indian film and music producer and businessman who was the founder of the Super Cassettes Industries Private Limited music label in Bollywood industry. After founding T-Series in 1983, Dua established it as a leading record label in the 1990s. And also Henry William Cavill was born on this day in 1983. He's a British actor. He gained worldwide recognition for portraying Superman in the DC Extended Universe, beginning with The Man of Steel 2013 and reprising the role in Batman vs. Superman 2016, Justice League 2017 and its Director's Cut 2021, and Black Adam also in 2022. And moving on, Tammy Wynette was born on this day in 1942. She was an American country music singer and songwriter, considered among the genre's most influential and successful artists. Along with Loretta Lynn, Wynette helped bring a woman's perspective to the male-dominated country music field that helped other women find representation in the genre. Her characteristic vocal delivery has been acclaimed by critics, journalists and writers for conveying unique emotion. 20 of her singles topped the Billboard country chart during her career. Her signature song, Stand By Your Man, received both acclaim and criticism for its portrayal of women's loyalty towards their husbands. Let's listen to it.
Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times and you have good times doing things that you don't understand. But if you love him.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं nfu.nsd@nic.in पर दे सकते हैं।
नमस्कार।